अगर मैं और आप इस महीने को देख लें, इसमें जो सबसे बड़ी चीज है ना इस महीने की खूबसूरती, वो है हिजरत, जो मेरा ख्याल है कि आज इस वक्त जिसमें मैं ज्यादा बात करना चाहूंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से जो मदीना हिजरत थी ना, वो एक दिन में नहीं हुई। कभी आपको रमजान में भी लगेगा कि तब हिजरत हुई थी, कोई कुछ और भी आएगा, एक तवील असर था। पहले प्लानिंग्स बनती गई, इरादे होते गए, फिर एक एक करके सितारे मक्का के दामन से उतरते गए और मदीना के दामन में चमकते गए। ये भी नसीब होता है, याद रखिए। जिससे अल्लाह ने दीन का काम लेना होता है ना, या जिसको अल्लाह ने जिंदगी के मकसद से जोड़ना होता है ना, अल्लाह फिर उसको मुश्किल हालात में नहीं रहने देता। कहते हालात नहीं बदलते, मैं तुझे इसे निकाल दूंगा। लेकिन कभी भी सहाबा मजबूर नहीं हुए, मजलूम थे मक्का में, लेकिन उन्होंने अपने हाथों नहीं काटे। कहा जोड़ देते हैं, हाजिरु मन हाजरा मानह अल्लाहु अन। मुहाजिर तो वो है जिसने उस हर चीज को छोड़ दिया कि जो के अल्लाह के रास्ते में रुकावट डाले। तो मुहर्रम की एक खास खूबी यह है कि ये हिजरत का महीना भी है। सवाल पैदा होता है कि हिजरत क्यों और किस चीज से। आप देखिए कि एक छोटी सी बात मेरी तरफ से अपने पास रख ले, कहीं काम आएगी जिंदगी में, किसी भी वॉलेट में छुपाए हुए नोट की तरह, कि अल्लाह ने मुझे और आपको अपने लिए पैदा किया था। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की इबादत करो, बन जाओ रब के। बस बीच में आ गया नफ्स, उसके बाद आ गया इबलीस, उसके बाद आ गए उसके चीले चांटे, और उसके बाद आ गई हमारी दुनिया। तो हिजरत जो है ना, ये जिंदगी में इस बात का सबूत होती है कि अल्लाह तेरे मेरे रास्ते की हर रुकावट को मैं अबूर करने को तैयार हूं, मैंने तुझसे दूर नहीं रहना। देखिए आप अपने माँ बाप से दूर है ना, इधर मैं भी इधर दूर हूं। हम टिकट महंगा हो के सस्ता हो, पाकिस्तान की फ्लाइट 7-8 घंटे हो या उससे भी ज्यादा, जाते हैं ना मोहब्बतों के लिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के साथ ताल्लुक जब बनता है ना, तो फिर एक बंदा हकीकत में अपने आप को उससे दूर नहीं रख सकता। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ वो सिबगत अल्लाह का रंग उतरने लगता है, और फितरत पे जो अल्लाह ताला मुझे आपको पैदा करता है मुझसे उतरते हैं, हमारी जिंदगी प्लूटेड हो जाती है। लिहाजा हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं। वो दिल जिसमें अल्लाह को बिठाना था, जो अल्लाह की मोहब्बत का मस्कन था, उसमें दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, इजल है हमारे वो शिवी खुलू भी मोल इजल। दिलों में तो बछड़े बैठ गए, किसी का गोल्डन काफ है तो किसी का सिल्वर काफ है, तो किसी का फर्नीचर है, तो किसी का फेम है, तो किसी का ब्रांड है। होता क्या कि हम बहुत सारों के बन जाते हैं। तो फिर हिजरत क्या बनता है कि ए अल्लाह मैं निकल रही हूं, सॉरी टू मच, एनफ इज एनफ, बस इससे ज्यादा मैं तेरे से दूर नहीं रह सकती। आप 5 साल ना जाएं, 6ठे साल आप खुद कहेंगे चूड़ियां दो बेचो चलो चलते हैं माँ को मिलने, कोई पाबंदियां लगाएगा आप कहेंगे सॉरी मैं नहीं आपके साथ रह सकती मुझे जाना है। तो जिसको अल्लाह से प्यार है वो कैसे, फिर उसकी जिंदगी में कैसे वो चीजें रह सकती हैं जो बंदे को गुनाहगार करें। मुहर्रम का पैगाम क्या है कि पिछली जिंदगी को छोड़ो, एक नई जिंदगी शुरू करो, हर वो रुकावट उतारो। जैसे आपने कभी बच्चों के साथ हर्डल रेस खेली होगी, हम जब छोटे थे कह लीजिए तो वो म्यूजिकल चेयर गेम कहते थे, मैं सोचती हूँ वो म्यूजिक का नाम हम कितने प्यार से ले लेते थे, लेकिन वो कुर्सियां हटाते जाओ और बैठते जाओ, रुकावटों को दूर करते जाओ, भाग जाओ, जो सबसे पहले आगे पहुंच गया वो जीत गया। हिजरत भी यही है, एक हर्डल रेस, क्या सारी रुकावटें उतारो। आपको मक्का से प्यार, आपको मक्का छोड़ना पड़ा, आप रो पड़े, गारे सौर की 3 रातों के बाद दोबारा उस मुकाम पे आए जहां मक्का दिख रहा था, तो आप रो पड़े और कहे मक्का मैं तुझे कभी ना छोड़ता, अगर तुझसे मुझे तू जुदा ना किया जाता। आपको घर से प्यार, किसको नहीं घर से प्यार। अब भी इस वक्त आप आके बैठी हैं माशाल्लाह, तो क्या आपको आराम से बैठी होंगी, कितने प्रोग्राम करके इधर उधर के ना फिर कहीं आप आई हैं। तो अपना घर छोड़ना ये कोई छोटी बात है, घर छोड़ दिया, सफर सफर, आप 5-स्टार होटलों में रह ले, मुझसे पूछे मुझे अल्लाह ने बहुत मौका दिया सफर का। लोग पाँव के नीचे हाथ रखते हैं, हथेली का छाला बना होता है बंदा सफर में, इतनी लोग इज्जत खिदमत करते हैं, लेकिन जब घर का दरवाजा खुलता है तो फिर समझ आता है कि ये लोगों ने होम स्वीट होम क्यों कहा। और आप में से वो हमारी प्यारी द बहने जो भी रिसेंटली हज करके आई हैं, उनसे पूछिए, किसी ने कहा हज के बाद तो अल्लाह के घर में भी नहीं फिर दिल लगता, फिर दिल करता वापस जाए, घर याद आता है, वो मक्का याद आता है, वो मदीना याद आता है। तो घर घर है आपके मेरे लिए, इसमें अल्लाह ताला ने बात रखी है कि अपनी जिंदगी से उन सब चीजों को निकालो। امام ابن قیم رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے امام تھے، کہتے کہ ہجرت ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا ہے. کیسے؟ کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اگر آپ انگلیوں پہ لکھ لینا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دوسروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی محبت کی طرف جانا پڑتا ہے. پوچھیے آپ، والذین آمنوا اشد حب للہ، کیا میرا دل میرے رب کی محبت سے چور ہے؟ سورت توبہ میں یہ بھی آیت ہے، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، نو چیزوں کے نام لیے اللہ نے جو بندے کی کمزوریاں ہیں، باپ اور بیٹے اور گھر اور تجارتیں، سب کچھ پوچھا. احب الیکم، تمہیں زیادہ پیار ہے، من اللہ و رسول ہی و جہاد فی سبیل ہی، اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے کی محنتوں سے تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں. تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو پھر انتظار کرو اللہ جب تک کہ اپنا حکم اور اپنا فیصلہ لے آتا ہے. تو اللہ کی محبت کی طرف جانے کا نام ہجرت ہے. پھر دوسروں کی تابے داری دل سے نکال کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کا نام ہجرت ہے. دوسروں کا خوف چھوڑ کر صرف ایک اللہ کا خوف دل میں بھرنے کا نام ہجرت ہے. دوسروں سے اپنی توقعات کو کاٹ کر اللہ سے امیدیں لگانے کا نام ہجرت ہے. اور دوسروں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھنے کا نام ہجرت ہے. دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، چاہے دین کا کام ہے یا دنیا کا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کا نام ہجرت ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ دوسروں کے آگے جھکنے کی بجائے ایک رب کے آگے جھکنا ہے. اور حقیقت ہے کہ توحید ہے ہی کیا کہ دوسروں سے بھاگ کر ایک رب کے دامن میں پناہ لے لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ دوڑو بھاگو میری طرف. آج ہمارا لیکچر کا ٹاپک بھی کیا ہے کہ محرم کے فیض اور برکتیں اور ویلکم حجاج کیا ہے. اس وقت میں تھوڑا سا آپ میں سے ان سسٹرز کو بھی انوالو کروں گی کہ جو ابھی حج سے ہو کے آئی ہیں یا کبھی پہلے کیا تھا، یا پھر انشاءاللہ ہم سارے اگلے سال کریں گے. یہ دعا تک کر لینا. آپ دیکھیے کہ حج کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب احرام کی حالت دی آپ کو تو کیا کچھ منع ہے؟ الحج یشخر معلومات فمن فرد فیہن الحج، سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، تم میں سے جو حج کی نیت کر لے فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال. یہ تین پابندیاں تو قرآن میں ہیں نا، لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، اور اس طرح کی نفسیاتی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ احرام باندھتے ہی آپ پر پابندیاں لگ جاتی ہیں. آپ مچھر بھی نہیں مار سکتے، چیونٹی بھی نہیں مار سکتے، اور اگر کسی نے مارا ہو نا تو یہاں کے اس کے بدلے میں وہ شاید بکرا بھی دینا پڑے تو دینے کو تیار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے کچھ دنوں کی اس پریکٹس کے بعد اب یہ پورا محرم کا مہینہ آپ کو دیا ہے کہ پریکٹس کو مستحکم کرو. احرام کی پابندیاں بھی ایک ٹریننگ سیشن تھی، آپ کہہ لیجئے وہ ایک شارٹ کورس تھا آپ کا. آپ محرم میں پورا مہینہ آپ نے اس شعور کے ساتھ جینا ہے کہ نہ فسوق، نہ جدال، نہ جھگڑا، نہ لڑائی، نہ کچھ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو ایک اسلام کا خوبصورت پہلو نہیں آپ کو دکھتا. اللہ کو کیا چاہیے آپ سے میرے سے کہ تم دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنو، دوسروں کو ضرر نہ دو، دوسروں کو تکلیف نہ دو. اور یاد رکھیے کہ محرم کے ساتھ جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنی کچھ عادتوں سے بھی ہجرت چاہیے. وہ کون سی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے نا تو ایک نئے گھر میں جوڑ جوڑ جاتا ہے، شوہر کو بیوی، بیوی کو شوہر کے ساتھ نبھا کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ طبیعتوں میں بہت ساری چیزیں نہیں میچ کرتی، بدل لیتے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید آپ کو حیرت ہوگی، شادی سے پہلے آپ کیا تھی اور اب 10 سال بعد آپ کیسی ہو گئی، ہے نا؟ تو کیا ایک سسرال کے ماحول میں پنپنے کے لیے، اپنے آپ کو پنپانے کے لیے مجھے آپ کو ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ تو اللہ کی نظروں میں جچنے کے لیے نہیں چاہیے. ہوتا کیا کہ ہماری کچھ عادات ہوتی ہیں جس میں سب سے پہلے تو وہی کہوں گی کہ نفس کی غلامی سے اللہ کی غلامی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، تکبر سے عاجزی کی طرف، شکووں سے شکر کی طرف، اور سستی سے چستی کی طرف، اور مایوسیوں سے امید کی طرف، اور غیبت سے نصیحت کی طرف، اور گناہوں سے توبہ کی طرف، خیانتوں سے امانتوں کی طرف، اور دوسروں سے ہر وقت ناراض رہنے کی بجائے عفو درگزر کی طرف، اور بے صبری سے صبر کی طرف آنے کی ضرورت ہے. یہ ہجرت ہے. आपके मेरे मामलात में हिजरत, मेरे आपके इखलाकियात में हिजरत, जब तक मैं आप ये नहीं करेंगे हिजरत की बात पूरी नहीं होगी। अब सवाल पैदा होता है कि पहला महीना और हिजरत, आपके लिए दिलचस्प बात है थोड़ी सी, शायद आपके लिए नहीं हो। मसलन आप देखिए कि दुनिया में मुख्तलिफ कैलेंडर्स हैं ना, ईसवी कैलेंडर है, फिर इसी तरह इस्लामी कैलेंडर है, रोमन्स एक कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इसी तरह ज्यूज का एक अपना कैलेंडर होता है। ईसवी कैलेंडर जिसको आप और मैं जनवरी फरवरी की सूरत में देखते हैं, किससे रिलेटेड आपको पता है? 25 दिसंबर को क्या हुआ? उनके बकौल, हालांकि कुरान सुन्नत इसकी तस्दीक नहीं करते, लेकिन हजरत ईसा की पैदाइश की तरफ मंसूब करते हैं। इसी तरह एक बुखरमी कैलेंडर है इंडिया और उसके इर्द गिर्द के लोगों में। आप देखिए कि वो राजा बुखरम जो थे, राजीत, उनकी निस्बत से मशहूर है। फिर इसी तरह से आप देखिए रूमी कैलेंडर, सिकंदर आजम जिसको लोग अलेक्जेंडर कहते थे, उसकी पैदाइश से शुरू हुआ। यहूद अपने साल का आगाज करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की तख्त नशीनी से। आपका मेरा कैलेंडर किससे शुरू हो रहा है? होना किससे चाहिए बाय द वे? क्या अल्लाह को गलती लग गई कि मुहर्रम सफर नहीं, बस एक ही तो महीना रह गया था, रबी अव्वल से शुरू हो जाता। तो यहां आप नोट कीजिएगा कि इस महीने की एक और खूबसूरत बात क्या है, 17 हिजरी, यानी नबी सल्लम को हिजरत करके आए हुए 17 साल और दुनिया से गए हुए 7 साल हो गए थे। हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत था। अब होता क्या था कि मुख्तलिफ बादशाहों के साथ इंटरेस्ट चेंज होती थी बातें, जैसे दस्तावेजात होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, तो मुसलमानों के पास कोई अपनी तारीख, कोई अपना जैसे स्टैंप वगैरह नहीं थी। तो हजरत अबू मूसा अल अशरी की तवज्जो दिलाने पे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा कराम से मशवरा किया और हजरत अली के मशवरे से यकम मुहर्रम को क्यों रखा गया, हिजरी कैलेंडर के साथ जोड़ा गया, क्योंकि नबी सल्लम ने हिजरत की थी। बात समझिएगा जरा। देखिए, अगर इस्लाम में शख्सियत परस्ती होती, फेवरेटिज्म होती, मेरे पीर मेरे मुर्शद, मेरे उस्ताद मेरे फुला, मेरे वली मेरे फुला, तो सबसे पहले सीधी सी बात थी, 12 कह ले 9 कह ले, 12 रबीउल अव्वल से नया साल शुरू होता, हर 11 को आखिरी दिन होता, 12 रबीउल अव्वल को पहला होता। लेकिन नबी के यौम विलादत से नहीं, बल्कि नबी के मिशन से नया साल शुरू हुआ। लोगों ने मुख्तलिफ चीजें सोची। एक ये भी ऑप्शन थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी की आयतें नाजिल हुई उस दिन से शुरू करते थे। ये सारी राय आई थी सामने, लेकिन साहबा ने कहा वो जो 13 साल मक्का में थे, ये कोई हमारे साल थे? मारे खाते, चोटे खाते, मजलूम बने हुए थे, तो क्या हम अपने साल का आगाज इन महरूमियों की दास्तान से करेंगे? नहीं, असल में इस्लाम का जो कह लीजिए कि गलबा शुरू हुआ था, वो हिजरत मदीना से हुआ। तो लिहाजा यकम मुहर्रम को उस वक्त में फिर नया साल का आगाज रखा था, और मदीना मुनव्वर की तरफ जो हिजरत का आगाज था जिलहज के आखिर में हुआ, उसके बाद जो पहला चांद निकला वो मुहर्रम का था। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के मशवरे से मुहर्रम को इस्लामी साल का पहला महीना करार दिया गया। ये फतहुल बारी की रिवायत है। ये बात मुझे आपको क्या सिखाती है? हमें आपको मुहर्रम के इस महीने ने क्या देना है कि ये एक मिशन वाली जिंदगी चाहता है, मकसद के साथ जियो। देखिए, अगर सिर्फ ये बातें करना मकसूद होता, मक्का में भी कर सकते थे। जिन्होंने सीरत पढ़ी है वो इसको जानते हैं। कमरे में बंद पढ़ के बैठ के आप फर्ज पढ़ें, सुन्नतें पढ़ें, तस्बीह नमाज पढ़ें, आप 40 नफिल पढ़ें, कोई नहीं रोकता। 13 साल की लड़ाई झगड़ा मक्का में क्या था? हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्क लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफिरून। ये आपसे मेरे सिर्फ तकाजा है। अब ये दूसरा तकाजा बता रही हूं। हिजरत पे तो आप और मैं अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैंने अल्लाह के लिए अभी तक क्या छोड़ा है। आप देखिए, दिन का आगाज किस चीज से होता है? नींद छोड़ते हैं अल्लाह के लिए। हमसे कहां प्यार है तुमको, नींद प्यारी है। हमने तो इस चीज को सोचा भी नहीं। किसी ने कहा कि फजर की नमाज की प्लानिंग करके ना सोना इस बात की दलील है कि तुमने अपना कल का पूरा दिन जो है वो बगैर प्लानिंग के गुजारना है। और उठो फजर पे, क्योंकि शैतान के खिलाफ ये तुम्हारी पहली जीत होगी। तो लिहाजा मुहर्रम हमें क्या सिखाता है कि नए साल की इब्तिदा करते हुए खुशी और मुबारक सलामत के जज्बात का फितरी इजहार किया है कि अल्लाह के लिए कुर्बानियां देना सीखो। नई उमंगे, भरपूर उम्मीदें, जल्द वलवले, पुरखलूस तौं के साथ शुरू करें। देखिए, साल सारा एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने एक चीज नोट की है, नई चीज का एक अपना ही मजा होता है। जैसे नई कॉपी शुरू करते हैं, क्या सोचते हैं? मैं भी सोचती हूँ ये, बल्कि मैंने कल ही शुरू की एसी के लिए। मुझे काफी देर से किसी ने ये गिफ्ट में डायरी दी, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना मुहर्रम के नाम ही करके पहली चीज इससे यही रखूं कि चलिए उनके लिए भी एक है और मेरे लिए भी एक नई चीज। नई कॉपी का शौक होता है, नए कपड़े का शौक होता है, गर्म बर्तन में एक नया चमचा आप किचन में ले आए, आपको उसी किचन में काम करने का एक्साइटमेंट नया होगा, होता कि नहीं? तो आज नया साल, नया महीना आपको मुझे कुछ प्लानिंग्स करने का दावत देता है कि देखो तुमने करना क्या है, नए जज्बे रखो, पीछे जो हुआ सो गया, कद सलफ गुजर गया, मट्टी डालो, अब तो तुम एक नई जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो आपको मुझे कुछ करना है, कुछ प्लान्स बनाने हैं, कुछ इरादे करने हैं। मैंने आज से, यानी आप सोचें कि आज अगर यकम मुहर्रम है, नेक्स्ट यकम मुहर्रम तक अपने आप को कुछ गोल देने हैं। तीन चीजें लिख लें बस, इसी पे इंशाल्लाह आपको वाइंड अप कराऊंगी, ताकि बहुत सारा कुछ है अभी भी, लेकिन वो एक छोटे से लेक्चर में नहीं हो सकता, उसके लिए हम आपको दावत देंगे दोबारा बुलाने की। लेकिन सबसे पहले मुहर्रम के साथ मैंने आपने क्या करना है, नंबर एक अपना मुहासबा, आज तक की जिंदगी में मैं कहां खड़ी हूं, फिर प्लानिंग करनी है आइंदा के लिए, फिर अमल शुरू करना, कहते हैं ना रेडी गो गो हेड देना है खुद को, और फिर एंड पे हमने अपने नताइज देखने हैं। अगर आप जिस मान और मोहब्बत के साथ यहां आए हैं ना, बस एक बात पे मेरे एतबार कर लें, वो कहते हैं ना कि फसत अज़कुरू न माकूलू, सूरत मोमिन में अल्लाह ने मर्द मोमिन की बात कही है कि लोगों एक वक्त आएगा याद करोगे, था एक दीवाना जो तुम्हें हमेशा एक ही बात कहता था। बस वही बात दिल में रखते हुए बीबी आपको कहूंगी, आज से एक साल खुद को दें। सबसे पहले मुहासबा, चलिए कैसे? मुहासबा क्या है? अपना हिसाब लेना। हजरत उमर फारूक कहा करते थे, हासिबू कबलान तो हासबू, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए, मुराद ये कि अपनी अकाउंटिंग करो, मैं कहां खड़ी हूं। देखिए अल्लाह ताला आप सबको लंबी उम्रें दे, आप अपने बच्चों के बच्चों की खुशियां देखें, आप अपने बच्चों को काबे के इमाम बने हुए देखें, आपके शौहर आपकी दुनिया की आंखों की ठंडक हो, अल्लाह आपको बेहतरीन औलादे दे, दुनिया का रिस्क भी दे, आखरत की जन्नतें भी दे। लेकिन चंद समय के लिए सोचिए इस वक्त कहां खड़ी हूं, टुडे अलान अभी, क्योंकि नया साल है ना, तो हम सोचे मैं आज किधर खड़ी हूं। देखिए आप में से हर एक सोचता है ना, मिसाल है कोई मेडिकल के पहले साल में होगा, कोई अकाउंट्स में पहले साल में होगा, कोई दुनिया के किसी कारोबार में होगा, किसी के भी नई नई शादी हुई होगी, किसी का भी नया नया बच्चा हुआ है ना, हम सबको पता है, मरने का सोचेंगे कहेंगे हाय बच्चों का क्या होगा, और इसी तरह से। तो इस वक्त जस्ट फॉर माई सेल्फ वेयर आई एम स्टैंड, मैं कहां खड़ी हूं आज रात, अगर मेरी कब्र में हो तो मेरी कब्र कैसी है? भूल जाए सब जिम्मेदारियों को, याद रखिए ये दुनिया जिम्मेदारी या जरूरत नहीं। अल्लाह ताला तो कहते हैं ये तो बच्चे और शौहर भी असली नहीं है, दिल बुरा ना हो जाए इसलिए इस मौजू को ना छेड़ू, लेकिन जिन चीजों के बीच में मरी जिंदगी और जिनको मरकज और महवर बना लिया, वो मकसद नहीं था, वो तो रास्ता था। आज हम कहाँ खड़े हैं, ओनली मैं और आप अपने ओन पे, यहां से कब्रिस्तान से सारे ही मेरे हाल गुजरते होंगे जो इधर से स्ट्रोमन की तरफ जाते हैं, या अगर आप कहीं भी जाते हैं सामने 2 मिनट की ड्राइव पे हमारे यहां से कब्रिस्तान है ना, रोज गुजरते हुए अपने आप को कहती हूँ अभी तू बाहर है, किसी दिन तू इसके अंदर होगी। और मैं वहां से गुजरते हुए अक्सर कहती हूँ उन लोगों को कि तुम्हारी मोहलत अमल खत्म होगी, मेरी अभी है, और अल्लाह मुझे कुछ करने वाला बना दे। तो अपना मुहासबा करें। इमाम इब्ने जौजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़े आलिम थे, ज़ादुल माद उनकी किताब है, कहते हैं कि अपना मुहासबा करो कैसे, सबसे पहले फ़राइज़ पे। अब मैं आपको पॉइंट्स दे रही हूँ, क्योंकि बड़ा लफ्ज़ बहुत बोलना आसान होता है, लेकिन बारीकियाँ अमली तौर पे ना देखें तो मज़ा नहीं आता। कहते हैं सबसे पहले अपने फ़राइज़ का मुहासबा करो, क्या मेरे फ़राइज़ पूरे हैं? और आपको तो फ़राइज़ में फिर 2 किस्में, इबादात और मामलात, ठीक है ना, नमाजें पूरी हैं, चलें आप मैं और अपनी बातों को देखते हैं, मेरी नमाजें पूरी हैं इस काबिल के अल्लाह को दिखाऊं? है वो नमाज जो इन सलात तनहा निल फख्शाय वल मुनकर के क्राइटेरियन पे पूरी उतरे? क्या मेरी नमाज बेहयाई बुराई से रोकती है? कसल्लु कमा राई तुमोनी उसल्ली पे है? इसी तरह से अपने मामलात को देखिए, लोगों से मैं कैसे डील करती हूँ, एक बीवी होने के नाते कैसी बीवी हूँ, कितनी बीवियां यहां बैठी हुई मैरिड सिस्टर जो आज जाकर अपने शौहर से पूछ सकें कि मुझे बताइए मैं कैसी बीवी हूं, आप मुझसे खुश हैं? अब वो शौहर जिसे अल्लाह खुश है उसका जवाब आपके लिए अहम है। जो खुद अल्लाह को ना खुश रखे और अल्लाह की मर्जी का ना, वो तो आपको कहेगा नहीं तुझसे मैं नहीं खुश, तू तब खुश हूं जब तू मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के दुनिया में घूमेगी। तो ये वो शौहर नहीं, मैं आइडियल शौहरों की बात कर रही हूं कि जिनको खुद भी पता है कि अल्लाह को खुश करना है। बच्चों से पूछिए अपने आप को जरा, सास बहू नंद देवरानी इन रिश्तों, कभी अपनी सास के पास बैठ के बैठे अम्मी जी सच बताए मैं कैसी बहू, ये है मुहासबा कड़ा, ये पुलसरात है, ये रिश्तों की पुलसरात बंदे को दुनिया में जीने नहीं देती। 30-30 साल की शादियों के बाद डायवोर्स यकीन ही नहीं आता। इतने साल बाद तो मैंने कहा बुरे बंदे से भी रहने की आदत हो जाती है, वो भी अच्छा लगने लग जाता है, अब कैसे घर टूट गया। तो मुहासबा बस इसको छोटा करती हूँ। फिर कहते हैं कि अगर फराइज में कमी पाओ, यानी नमाजों में कमी कोताही है, रिश्तेदारियों में, मामलात में, जो भी मामला, तो बहुत बड़ा लेवल है, तो फिर कहते हैं कि नंबर एक इस्लाह कर लो या तदारुक करो। इस्लाह क्या है? मतलब कंसल्टेशन करो, नमाजें नहीं पढ़ी तौबा करो, अब अल्लाह से आगे पक्की करो, रोजे छुटे हुए थे तो रोजों को पूरा करो, और इसी तरह सो ऑन। और अगर क्वालिटी में कमी है तो क्वालिटी को बेहतर करो, बुराई को इत्फा बिल्लती यासन, बुराई का जवाब भलाई से दो। तो टारगेट बनाते हैं, आज की अपनी नमाज जो भी आपने पढ़ी थी या इससे बाद पढ़ेंगे उसको जाके घर में सोचिएगा और कह मैंने नहीं, हर दिन, चल दिन नहीं, हर महीने में एक, हर क्वार्टर में एक, कोई एक नई सूरत याद करनी है। क्योंकि जब मैं 2017 की इन तारीखों में पहुंची होंगी ना, तो मैंने कहना है कि मैंने इस एक साल में अपनी नमाजों की इसलाह कर ली। करके तो देखिए, क्यों हम कुल वल्ला पे पड़े हुए हैं, क्यों सूरत असर वाला सरिंदल इंसानी लफी खोसरा, पढ़ते भी वो सूरत है जो सबसे छोटी सूरतों में से है, और उसका मतलब भी है कि इंसान घाटे में और अल्लाह हमारे पास तेरे लिए टाइम नहीं है क्योंकि अभी बिरयानी भी बनानी है, हमारा हाल अच्छी हो गया, टरखाते हैं हम नमाजों में। तो बहरहाल सबसे पहले फराइज को देखिए, ज़कात तो नहीं छुटी हुई, पिछली जिंदगी की भी ज़कात नहीं दी, देनी पड़ेगी, पिछले रोजे नहीं रखे रखने पड़ेंगे। शैतान यानी उसका बुरा हो कि नमाजें जिसको अल्लाह ने माफी के साथ रख दिया उसके पीछे कजा उमरियों पे लोगों को डाल दिया, और फर्ज रोजे छुटे होते हैं हमारे मरे हुए लोगों के भी वो कोई नहीं रखता, अपने भी नहीं लोग रखते, कहते हैं अच्छा पीरियड्स के छुटे हुए रोजे रखने चाहिए तो रखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं दूसरे दर्जे पे मुहासबा किस चीज को होगा, मनहियात, फॉरबिडन थिंग्स, कोई हराम चीज तो मेरी जिंदगी में नहीं है। देखिए ना दो चीजें ना, डूज एंड डोंट्स, पहले डूज का कर लिया तब डोंट्स। तो मुहासबे का दूसरा नुकता क्या है कि मैंने देखना है कि मैं कोई गलत चीजें तो नहीं कर रही, गिफ्तें तो नहीं है जिंदगी में, ऐसी पटर पटर बोलती तो नहीं रहती, किसी का मजाक तो नहीं उड़ाती, वादा खिलाफी तो नहीं है, जिंदगी के मामले में संजीदा हूं मैं। यानी आप अपनी बुराइयां नोट करें, सीधी सी बात है हर एक में होती है, लंबी बात तो नहीं करती, टालने की बात तो नहीं करती। और आज भी मुझे किसी के मामले में बहुत तजस्सुस का शौक तो नहीं, तो बस टारगेट कर लीजिए कि इंशाल्लाह मैंने अपना तज़किया कर देना है इस चीज में। फिर इसी तरह कहते हैं तीसरे दर्जे पे गफलत का मुहासबा करो, अपनी गफलतों को तो देखो, यानी क्या मैं गफलत की जिंदगी बसर कर रही हूं, किस चीज के ऊपर गफलत, मकसद हयात से गाफिल तो नहीं हूं। ये है असल में नए साल का पैगाम, नबी ने सारी जिंदगी एक मकसद को दे दी, उसने नहीं पूछा और कब तक, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कब जान छूटेगी, कब खत्म होगा, ओके वीकेंड नहीं, वीकडेज नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, जैसे दिल धड़कता है ना, ईमान वाले की जिंदगी का मकसद ये है कि वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र, अपनी जिंदगी को देखें। और फिर मशवरा क्या देते हैं, कहते हैं सोहबत सालेहीन को इख्तियार करो, नेक लोगों के साथ बैठकर नेकी को दिल करता है, और गुनाहों के साथ आप देखें, अब बुरा बंदा नेकों में बैठना शुरू करेगा ना, ऐसे तो उसका भी दिल करेगा मैं भी नेकी करूं। और इसी तरह की बातें आप देखिए कि जब लोग करते हैं तो उनको खुद अंदाजा होता है, मक्का में आप रहते मजलूमियत में मर जाते, नहीं आपने चेंज लिया, गलत चीजों को कभी भी अपनी जिंदगी में जगह ना दें, आपके नहीं मैंने इसको चेंज करना है। तो जब आप और मैं ये प्लान कर लेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसके बाद फायदा होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मुहर्रम का महीना क्या है, कुर्बानियों का महीना है। आप कहेंगे वो तुमने पिछले महीने कर ली ना, वो कौन सी कुर्बानी की थी, सुन्नता अबीकुम इब्राहिम, या फिर एक आपको खूबसूरत रब देना चाहूंगी। जिलहज में हमने इस्माइल की कुर्बानियों को देखा, और अगर हम मुहर्रम को देखें तो कितनी कुर्बानी है, जिसमें फिर एक कुर्बानी नवासे रसूल की कुर्बानी है। हजरत इमाम हसन और हुसैन अपने खानदान को साथ लेकर किस रस्ते में कुर्बान हुए आपको पता? हक के रस्ते की कुर्बानी। ये लिखिए, हम याद करें वाकया करबला को, हमें हक पहुंचता है, पढ़ें सुने, लेकिन जरा वो मकसद तो देखिए, वो उन्होंने जान क्यों कटाई? उन्होंने हक के लिए जान दे दी तो मैंने जान दी है? सच बताएं, अपने से एक सवाल लिखते हैं, ये भी एक मुहासबे का नुक्ता है, मैंने हक के रास्ते में मैंने क्या कुर्बान किया? जान तो बड़ी दूर की बात है, अभी तो वक्त, टैलेंट, सेहत, मैं एक काम कर सकती हूं पर मैं नहीं कर रही, ये तो फिर मुहर्रम मनाने वाले लोग नहीं हो सकते। मुझे अल्लाह ने एक टैलेंट दिया, मैं नहीं कर रही तो मैं खयानत कर रही हूं। तो हक के लिए जान देनी तो दूर की बात थी, वक्त दे दें, टैलेंट दे दें, हक मिन्नतें करता है आज के दौर में। इस्लाम एक सौतेले बच्चे की तरह निग्लेक्टेड है इस वक्त, हमें चीखे नहीं आवाज आती, हम सुनते नहीं, हमारा बच्चे की नोज बहती है ना तो हम कहते हैं इसको स्नीजिंग हो रही, बीमार हो रहा, डॉक्टर पे ले जाओ। लेकिन वल्लाही हमने जितना अपने गोद के बच्चे से प्यार किया, इतना तो इस्लाम से भी नहीं किया। ठोकरों में इस वक्त उम्मत मोहम्मदिया, जिसका दिल आता है एक नई ठोकर, एक नया इल्जाम लगा के जाता है, और हम मजे कर रहे हैं, माइंड ना करे कोई। लेकिन हज भी क्या हो गया, जाने से पहले दावते, आने के बाद दावते। थर्सडे को हमारी बुखारी की क्लास होती है, या मंडे से थर्सडे अल्हम्दुलिल्लाह, तो किताबुल हज पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई बात आई तो साथ ही डिस्कशन में अपने वाक्यात सुना रहे थे। मेरी गवाही नहीं है, मैं नहीं कुछ कहती, लेकिन इधर भी वो अभी भी हों तो मैं उनको ही कह दूं आपके सामने आए, कि एक सिस्टर यहां बैठी हुई थी थर्ड लाइन में स्टूडेंट, उन्होंने कहा उस्ताजा के हज करके जो लोग आते हैं, इतने लोग उनके बाद घरों में आते हैं उनको मिलने, के बाज दफा फर्ज नमाजें भी कजा हो जाती हैं खाने वक्त। आज के इस प्रोग्राम में भी कई लोगों की इसी तरह का आउटपुट इनपुट आया है कि उनका दिल था कि हम जाके सुने। देखिए आप एक महीने के करीब अल्लाह के घर में रहे, कितना रो के आए होंगे आप, मुझे पता है। वो आखिरी नजर, वो काबा याद आता है, और वो मक्का याद आता है, और वो मदीने की गलियां। तो यहां तो वो मदीने वाला कुरान पड़ा हुआ है, यहां तो काबे की तरफ जाने वाले कदम पड़े हुए, ये कुरान ही तो मक्का और मदीना में था। वल्लाही ये कुरान मक्का में ना उतरता तो वो कभी भी उम्मुल कुराना बनता। मदीना क्या था? यसरब, छोटी सी बस्ती, गांव, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन भरे कदम गए तो वो मदीना तो नबी बन गया, मदीना मुनव्वरा चमकता हुआ मदीना बन गया। तो जो चीज आप वहां ढूंढने गए थे, वल्लाही वो तो आपके पास पड़ी हुई है। फर्ज पांच दफा की अगर नमाज पे आपने अजान सुनते ही जायनमाज नहीं बिछाया तो सॉरी टू से दैट, फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक वहीं छोड़ा है। हाजिर हूं मैं रब, मैं हाजिर हूं। अपने आप को हम चेक करें, मेरा अल्लाह से ताल्लुक कितना है, नबी सल्लम की सुन्नतों पे कितनी हूं, अपनी जिंदगी के मकासद कैसे हैं, अपनी जिंदगी के हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह में कैसा बैलेंस है, अपने बच्चों की, घर वालों की तरबियत कैसी करती हूं, और सबसे बढ़कर आप देखिए, एक रब इसमें रबी कल्लाजी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ जिसने पैदा किया, उस इल्म के साथ आज मेरा क्या ताल्लुक है। वो कहते हैं कि गल मक्का जाया नहीं मुकदी जब तक दिलों न मकाइए। मैं जब हज और उमरे पे गई पहली दफा भी, और जब भी शौर के साथ गई, तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र करके आई कि मैं सीरत पढ़ के आई हूं। वहां भी जाके कुछ नहीं मिलता, धक्के ही मिलते हैं, भूख मिलती है, प्यास मिलती है, बस। क्यों? कि इल्म हासिल किए बगैर जाते हैं तो क्या है। और वहां से एक पैगाम लेकर आना था कि वम ममायन फो ना सुफयम कुस, जो लोगों को फायदा देगा वही बचेगा। दो चार घंटे से ज्यादा लोग आपको मुझे अपने घर में नहीं रखेंगे जिस वक्त हम उनको फायदा देना छोड़ देंगे। सबसे पहले आपका मेरा नाम जाएगा, मैयत बनेंगे हम, मैयत को दफना दो, मैयत को दा दो, उधर कर दो, हॉस्पिटल से वो सीधा आपको स्टोरेज रूम में ले जाएंगे, फिर वहां से एयरपोर्ट के फ्रीजरों में रख देंगे, फिर वहां से पीआईए के जहाजों में रख देंगे, फिर वहां से प्यारे निकालेंगे, और फिर चंद घंटे बाद आपका दफन हो जाएगा। अमूमन यही होता है, ये भी मुझे किसी ने सुनाया कि जो बेचारे यहाँ फौत होते हैं तो उनको यहां भी नहीं रहने देते, वो कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उतनी देर। जो करना है आज करना है। हजरत हसन हुसैन यही पैगाम देकर गए कि हक के ऊपर बातिल की चोट पड़ेगी तो हक जीतेगा। जान दी दी हुई उसकी थी कि हक तो यह क्या कदाना हुआ। सुन्नतों पे देखिए, नेक लोगों के कामों को देखिए। इसके अलावा बाकी सब कुछ मेरी आपकी अपनी मर्जी के इख्तरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया और हजतुल विदा के मौके पे कहा, लोगों ये कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा वक्त है, सब याद है आपको हदीस? सहाबा बोलते कोई नहीं थे, कहते अल्लाह के और उसके रसूल को पता है। फिर आपने फरमाया कि ये अरफे का दिन है और जो कुछ, और उसके बाद क्या फरमाया आपने? अल्लाह सब बता रही हूँ बात का, पिछले महीने के लेक्चर्स में वो हदीस कोट की हुई है। आपने फरमाया कि ऐ काबा तेरी एक अजमत है और मोमिन की तीन अजमतें हैं, उसकी जान, उसका माल और उसकी इज्जत। ये हुरमतों का महीना है। आपने मैंने लोगों के जान माल और इज्जत से नहीं खेलना। किसी का माल कोई ले ना, 10 लोग बुरा कहेंगे, कोई गबन कर दे कहेंगे धोखा दिया, चोरी करे कहेंगे इसको पकड़ के जेल में डाल दो, बुरा कहेंगे। लेकिन सबसे कम जिस चीज की हुरमत का हम ख्याल रखते हैं ना, वो लोगों की इज्जत है। अपने नाहनों से कम लोगों को नोचते हैं, हमारी जुबान लोगों की गिबतें ज्यादा करती है। लेट डाउन करना, और मैं माजरत के साथ अपने आप से भी कहूंगी कि ये आम लोगों से ज्यादा दीनदार लोग करते हैं। कीचड़ उछालना, लोगों को खिलाफ करना, उसकी बातें उसकी बातें, ये अपनी जगह एक टॉपिक है। इंशाल्लाह इस महीने में बहुत सारे दर्स होंगे घरों में भी, तो मैं उसमें एक एक हुरमत को अलग अलग बयान करूंगी आप लोगों के सामने, जो भी आना चाहे। लेकिन इस वक्त इस बात पे आपको छोड़ूंगी कि अब मुझे आपको अब से लेकर करना क्या है, अब से लेकर 10 तक के मैं दिन बोल देती हूँ, फिर बाकी आप खुद बोल दें। सबसे पहली बात है कि नबी सल्लम हर नए चांद के साथ एक दुआ कहते थे। मैंने पहले भी हर महीने के साथ ही दोहरवाई है, अभी फिर दोहरा लीजिए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिलमनी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्ला। नबी सल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, सहाबा याद करते थे। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, इस चांद को हमारे ऊपर अमन और ईमान, अमान सलामती और सलाम, और तौफीक दे हमें इस बात की कि हम वो करें जिससे तू पसंद करता है, और तू हमारा भी रब है, रब्बुना और हमारा रब और तुम्हारा रब। तो ये दुआ पढ़ लीजिए, एहतमाम कीजिए चांद देखने का। आज एक सुन्नत जो हमारी जिंदगियों से निकलती जा रही है, क्योंकि गैजेट जो पड़े हैं यहां से देख लेंगे कब चांद दिखना है। हालांकि आप देखिए, चांद देखना होता है वो कंप्यूटर की स्क्रीन या अपने सेलफोन में नहीं देखते, वो बाहर खुले अफक पे देखते हैं। तो बाहर जाकर चांद देखने की कोशिश करें, दिख जाए तो ये दुआ पढ़ें। ये देखिए, ये वो हमारे साथियों की रात की कुछ घंटों की मेहनत है जो आपके सामने है, और उनके लिए भी दुआ करें। मेरे हाल उनकी 2-3 माह की बच्ची है, न्यू बॉर्न बेबी है, जिसको मैं जानती हूँ और जिन्होंने साथ हेल्प किया, वो पता नहीं कितनी मजबूरियों में, लेकिन उन्होंने आपके लिए ये प्रेजेंटेशन भेजा। इसमें ये पूरी चीजें हम मुहर्रम की अहमियत देख चुके, या वहां पढ़िएगा। फिर अहदीस मैंने आज बहुत सारी इसी में से कोट की हैं। फिर इसमें आशूरे के रोजे की बात है, यहूद से मुमासलत की बात है, फिर इसी तरह से मुहर्रम के जो वाकयात आपसे शेयर किए हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। मुहर्रम का पैगाम क्या है ये भी हमने ले लिया, नया साल किस जज्बे और सोच के साथ मनाना है। फिर इसी तरह कर्बला के वाक्य पे थोड़ा सा हिंट दिया है। तो ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट पे जाइए, मुहर्रम की हुरमत का क्या ख्याल रखना है कि हम इसके अंदर सूरह तौबा की आयत 36 में आता है, फला तुज़लिमू फीहिन्न अनफुसकुम, अपने ऊपर इन महीनों में जुल्म ना करो। तो हमने जुल्म की सबसे बड़ी किस्म शिर्क से रुकना है। फिर हर वो काम जो अल्लाह की नाराजगी और नाफरमानी का हो, गुनाह और मुनकर बिदात मुनकरात हो, उससे भी बचना है। और किसी की बेइज्जती नहीं करनी। आज बैठ के नियत करें, आज के बाद मैंने अपनी जुबान को भूलों की लड़ी बनाना है। कोई बड़ा अच्छा है, किसी ने एक मैसेज भेजा हुआ था जिसका मतलब यह था कि कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती किसी चीज को तोड़ने के लिए, आप जरा जुबान मोटी कर लें, खुद ही लोगों के दिल टूट जाएंगे आपकी बातों से। सारा दिन जिस पुर्जे को मिस यूज करते हैं अक्सर, वो जुबान है। तो इसकी हिफाजत इंशाल्लाह करेंगे इस वक्त में। झगड़े और फसाद से भी बचना है, अपने भाइयों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना है। सही बुखारी की रिवायत है 1739, हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, इस शहर की और इस महीने की हुरमत है। तो आप बताइए, क्या ये पैगाम हमारे लिए काफी नहीं? तो जुबान और अमल दोनों से, हर ऐसे काम से बचना है जो दूसरों को अजियत और तकलीफ दे, किसी की दिल आजारी ना हो। सहाबा किराम जैसी बेमिसाल शख्सियात के बारे में कोई नाजेबा कलेमात नहीं अदा करने जिनसे इनकी बेअदबी और तौहीन हो, कोई रंजिश और नाचाकी हो भी तो ख़त्म कर दें, यहाँ से करके जाएं, बैठे बैठे अपने आप से कहें मैंने सबको माफ़ किया। यकीन करें आपको लगेगा आपका 5 किलो वजन कम हो गया है, कंधों पे बोझ उठाए फिरते हैं और जब कोई अपना प्यारा दुनिया से जाता है फिर रोते हैं, हाय भाई की तो शक्ल ही नहीं देखी थी फलां नहीं, यहाँ बैठे बैठे बोले जिसने मुझे कुछ कहा, जिसने मेरा कुछ लिया, मेरा दिया, मैंने उसको अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया। और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमें हिकमत दे और हिकमत के साथ इस चीज़ को लेकर चलें। वक्त के मुताबिक जितनी चीज़ें आपसे शेयर हो सकी, जज़ाकअल्लाह खैर, आप सब मेरे साथ खामोश किस्म के हिस्सेदार थे, क्योंकि सुनने वाले जो होते हैं ना वो बोलने वाले के साथ मिलते हैं। आप कह लें कि सुनने वाले बोलने वाले का आईना होते हैं, आपके आईने में मैं खुद को देख रही हूँ। तो जज़ाकअल्लाह खैर।